जिनके गुणों के गान में भगवान महान गुण के समय साथ परमागम की गाथा नंबर 387 से 389 तक चली थी और इनका आत्मसाती टीका पढ़नी है। मेरे ख्याल से गाथाएं पढ़ ली थी, आत्मटीका भी पढ़ ली थी क्या है? अलग पढ़ना है वो तो गाथाओं के पहले है। दो सौ चौबीस पढ़ो। आरंभ से ही पर पदार्थों के साथ और रागादि विकारों के साथ एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ने की बात कही थी। तो वहां तो चार चीजें थी, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब ये चेतना में तीन चीजें रह गई, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना में तो कर्तृत्व की बात आ गई, जो कर्ता कर्म अधिकार का खास विषय है कि भगवान आत्मा न करता है कर्ता और न भोगता है। तो कर्म फल चेतना भोगने के भाव का नाम है और कर्म चेतना करने के भाव का नाम है। तो अब ये ज्ञान चेतना नहीं, तो वो कहते हैं कि इसके विरुद्ध है, उन्होंने जो एकत्व ममत्व है उसको पकड़ा है। एकत्व ममत्व वो इसका चारों चीजें तीन में गर्भित की, जो अपने कलश पढ़ रहे हैं ना कि ज्ञान चेतना से निरंतर भगवान आत्मा को प्रकाशित करती है और अज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को रोकती है। और वह अज्ञान चेतना दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। गाथाओं में तीन गाथाएं थी ना उसके पीछे, चार थी आगे हैं तीन। तो उसमें भी इस बात को उन्होंने कहा है कि जो करने का और भोगने का भाव है और स्वामित्व का भाव है ये अज्ञान चेतना, और अब आगे जो बढ़ रहे हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात कर ले ना प्रतिम और अवलंब। तो वो कहते हैं कि ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित और शुद्ध ज्ञान को रोके नित अज्ञान चेतना, और बंध की कर्ता यह अज्ञान चेतना यही ज्ञान से तो आत्म निज ज्ञान चेतना। मैंने अज्ञान चेतना जो कर्म और कर्म फल चेतना है इनको छोड़कर पर ये ज्ञान चेतना में ही तुम चेतो। तात्पर्य यह है कि यदि बंध को रोकना है और शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करना है तो ज्ञान की संचेतना को निरंतरता प्रदान करो। निरंतरता प्रदान करो माने एक ही धुन लगाओ, परमे से अपनापन छोड़कर अपर का कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्पों को तोड़कर, और मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जो तुमने निर्णय किया है। तो अभी निर्णय की लेवल तक जब बात थी तब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात थी, अभी संयम माने चरित्र की बात आ रही है तो कहते इसी बात की निरंतर रट लगाना, निरंतर चेतना, जिसको वो आगे आचार्य कहते हैं कि उस भेद विज्ञान की भावना को नचाओ। और नचाओ का क्या मतलब है? नचाने में चाहे दो घंटे नाचे चाहे चार घंटा नाचे, लेकिन वो नाचने की सब क्रियाएं बिल्कुल एक सी ही होती हैं, वही वही रिपीट होती हैं। ख्याल में है ना, यदि आपका कोई संगीत चल रहा है तो संगीत में एक पहला छंद फिर दूसरा छंद, छंद बदलते भी जाएंगे, लेकिन वो नाचने का जो वो है ना स्वरूप, तबला बजाने का आप उसको तो एक जो धुन जम जाती है ना, वो ही धुन बार बार जमी रहती है। इसलिए इसको ये ना नृत्य कह रहे हैं कि तुम ज्ञान चेतना को नचाओ। क्या नचाओ? कि उसे बार 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 बार, अब वो कर्म चेतना, कर्म को इनने पकड़ लिया, ज्ञानावरणादि आठ कर्म, फिर उनके 148 भेद, अब तुम उनको नचाओ। नचाओ माने एक माने मैं मति ज्ञान नहीं हूं, मैं शुद्ध ज्ञान नहीं हूं, जैसे मैं ये नहीं हूं, मैं मति ज्ञानावरण नहीं हूं, मैं शुद्ध ज्ञानावरण नहीं हूं, आगे पूरी बार बार उस बात को भी रिपीट करके अभी बोल बताएंगे वो कि इस तरह तुम इस ज्ञान चेतना को निरंतर नचाओ। और यही अज्ञान चेतना का निषेध है, इसी में से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से छूटोगे, और निरंतर जो ज्ञान चेतना होगी उसी में से वो ज्ञान चेतना केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगी। देखो बनारसी दास का छंद है, अच्छी चौपाइयां लिखी हैं इनने, इसी के बताने वाली बोलना।
ज्ञायक भाव जहां तहां शुद्ध चरण की चार, ताते ज्ञान विराग मिल शिव साधे समकार, जथा अंध के कंधे पर चढ़े पंगु नर कोय, बाके द्रग बाके चरण होइ पथक मिली दोइ, तथा मोख मग सोय वह जाने पद का मरम, वह पद में थिर होय, ज्ञान जीव की सजगता कर्म जीव की भूल, ज्ञान मोक्ष अंकुर है कर्म जगत का मूल, ज्ञान चेतना के जगे प्रगटे केवल राम, कर्म चेतना में बसे कर्म बंद पर, जब लग ज्ञान चेतना न्यारी तब लग जीव विकल संसारी, जब घट ज्ञान चेतना जागी तब समकिति सहज वैरागी, सिद्ध समान रूप निज जान पर संजोग भाव परमान, शुद्धातम अनुभव अभ्यास त्रिविध कर्म की ममता नास।
ज्ञान भाव जहां जहां तहां शुद्ध चरण की चाल, जहां ज्ञान ज्ञान चेतना स्थिर हो गई तो उसी का नाम चारित्र है। तो कहते और कोई चारित्र नहीं है, और कोई चारित्र नहीं है, ज्ञान चेतना का नचाना यही चारित्र है। और इन्होंने उदाहरण दिए कि जथा अंध के कंधे पर, राजवार्तिक में भी है उदाहरण ये, और भी कई जगह आता है कि दो आदमी मिले, एक अंधा और एक लंगड़ा, और लंगड़े के कंधों पर अंधा बैठ जाए तो फिर वो लंगड़ा जो है, लंगड़ा बैठ जाए अंधे के तो अंधा चलेगा और लंगड़ा उसे रास्ता दिखाएगा। तो कहते एक ने रास्ता दिखाया वो ज्ञान हो गया, और जो चला वो चरणों से चला, पैर उसके ठीक है ना। तो कहते यहां तो दो उदाहरण दिया है दो आदमी के मिलने का, लेकिन यहां दो आदमी नहीं है, यहां वो ज्ञान और चरण एक आत्मा के ही हैं, और इसके लिए इस उदाहरण को पकड़कर जो लोग इस तत्व ज्ञान की गहराई को पसंद नहीं करते हैं वो यही कहते हैं कि कितना क्लियर लिखा है कि तुम तत्व ज्ञान माने भगवान आत्मा को जानो, ज्ञान का तो यही उपयोग करो और फिर चलो माने अनुविधारण करो, महाविधारण करो, मुनि हो जाओ, दीक्षा ले लो, इसको वो चरण कहते हैं। और देखो लिखा ना कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, कि ज्ञान और क्रिया दो मिलकर के ही मोक्ष होता है। पूज्य गुरुदेव सिंह का ये कहना है, आचार्यों का सबका ये कहना है कि ये ज्ञान और चरण ये दो नहीं है। पहले जो जानना और जान करके मानना, यहां तक वो ज्ञान चेतना है, और फिर उसी को नाचना वही चरण है, वही चलना है, मतलब दो नहीं, उसी में दो हैं। देखो ज्ञान में और चरण में क्या फर्क है, ज्ञान के रिपीटेशन को ही ध्यान कहते हैं, ध्यान माने चारित्र। जो निर्णय आपने ज्ञान में किया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, और उसको निर्णय को श्रद्धा में लिया तो उसी का नाम सुन्ना दर्शन हो गया, संधान हो गया। अब इसी में रमे रहना माने क्या है कि यही जानते रहना, निरंतर इस चेतना को जागृत रखना, माने ये उपयोग की पृष्ठभूमि में रहे, ये लब्धि ज्ञान में ना चली जाए। सम्मा दर्शन रहेगा तो लब्धि ज्ञान में तो गारंटी से रहने ही वाली है, और उसका ही समझ लो अनंतानंद जी कसाई के अभाव में वो जो चारित्र, इसी का जो नाम वो चारित्र है कि वो जो लब्धि के ज्ञान के लेवल पर वो निरंतर शुद्धि बनी रहती है। लेकिन अब यहां तो ये कह रहे हैं लब्धि नहीं, उपयोग के लेवल पर भी इस भावना को तुम नचाओ तो उसका नाम चारित्र है। तो यहां पर अंधा और पंगु मिलकर के माने ज्ञान के बिना चारित्र लंगड़ा है, और चारित्र के बिना ज्ञान, चारित्र के बिना ज्ञान लंगड़ा है, और इसका उल्टा करो, ज्ञान के बिना चारित्र तो चलेगा नहीं, तो ज्ञान क्या करेगा ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि दो मिल गए, लेकिन उदाहरण में दो बताए हैं, लेकिन यहां वस्तुतः दो नहीं है। एक जो निर्णय हुआ है ज्ञान में, अब वो निर्णय तो हो गया, अब क्या होता है कि निचली भूमिका में कि 6 महीने में एक दफे उपयोग में आ रही वो बात, और फिर दुनियादारी में उलझे रहते हैं, और श्रद्धा के लेवल पे कायम रहती है। श्रद्धा के लेवल पे कायम नहीं रहे और लब्धि ज्ञान के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सम्मा दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं रहे। श्रद्धा के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सिद्धांत सम्मा दर्शन नहीं रहे, और लब्धि ज्ञान के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सम्यक ज्ञान नहीं रहे, और उपयोग में आ जाए तो सम्यक चारित्र भी हो जाए। अब उतना अंश में जो चारित्र है वो अंश को उन्होंने चारित्र नहीं कहा, कैरिया चरित्र मोहे बस लेन संयम, अब आप सुने ना वो नहीं है, लेकिन अब उसको तुम नचाओ, अब काम खत्म हो गया, समझने का काम खत्म हो गया। जब बोलते हैं सम्मा दर्शन हो गया तब कहते हैं अब समझने का काम खत्म हो गया, जिसको अभी अपने लोग कहने लगते हैं ना बहुत सुना है, बहुत पढ़ लिया है, सब जान लिया है, अब ध्यान करो। बात तो ऐसी है, अब जब कहते हैं सब जान ही लिया है तो अब क्या सुनना और क्या पढ़ना, अब तो उसी में उपयोग को लगाना है ना। लेकिन उपयोग को लगाने की प्रारंभिक स्थिति यही होती है कि हम पढ़ाएं सिखाएं, अनुपरीक्ष उसके बारे में अनुपरीक्षा करें, चिंतन करें, पूछें, प्रक्षणा बांचना प्रक्षणा आमना है ना, और धर्मोपदेश, ये सब उसी के तो रूप है ना। एक ही चीज को हम बार बार उपयोग में ला रहे, और जितने अधिक काल तक उसको उपयोग में रहेगी उतनी वो धारणा ज्ञान में पक्की हो जाती है। ये लोग होते हैं ना जो सतावधानी जो प्रयोग करते हैं, आपको बताते हैं कि आप سو چیزیں ایک ساتھ ایک قلم سے بول دو تو بالکل ہو بہو دہرا دیں گے. تو ان کو آپ ایسے سپاتے سے بولتے جاؤ نا کہ جل پھل ایسا, تو بھی نہیں, پھر نہیں دہرا سکتے. وہ کہتے دھیرے دھیرے بولو کیا, اور اس کو بھی ابزرو کرتے ہیں, پھر کہتے ایسا اب آگے بولو, پھر آگے بولو. ایسا کر کے جو چیز اپن پانچ منٹ میں بول سکتے ہیں وہ اسے آدھ گھنٹہ میں بلوا کر کے ابزرو کرتے ہیں. انڈائریکٹ وے میں بھی رکھتے ہیں کیونکہ اتنے ادھک دیر تک اپیوگ اس میں رہا نا, کرنے نا, تو کسی نہ کسی طریقے سے جب اپیوگ زیادہ رہتا ہے, ادھک کال لگتا ہے, تو ہمیں یاد ہو جاتی ہے وہی چیز. ہمیں کہتے دس دفعے رٹو, دس دفعے تو اپیوگ اسی میں لگا رہا نا نرنتر. منہ سے نہیں رٹو تو بھی یعنی اپیوگ میں ہی رکھو گے تو بھی یاد ہو جائے گا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس بھاونا کو تم نچاؤ. اب انت کال تک تمہیں بھگوان آتما کو ہی جانتے رہنا ہے نا کیول گیان ہونے کے بعد. تو پھر ابھی ادھکتم پریم تو لگاؤ, جب تک انتر مہورت نہیں ہو لگاتار تم نہیں رہو گے تب تک وہ پکا ٹانکا نہیں لگے گا. اور انتر مہورت میں ایک دفعہ اپیوگ رہ گیا آتما میں تو پھر وہ ایسا پکا ہو جاتا کہ انت کال تک کے لیے رہ گیا. وہ انتر مہورت ہی نہیں ہے, انتر مہورت تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, پھر وہ باہر آتا ہی نہیں ہے, خیال میں نہیں نا. تو اس لیے کہتے ہیں جہاں گیان کریا ملے تہاں موکش مگ ہوئی, وہ جانے پد مرم کا وہ پد میں پھر ہوئی. وہ پد کا مرم جانا یہ سمیہ گیان اور سمیہ درشن, اور پد میں استھر ہوا یہ سمیہ چرتر. گیان جیو کی سجگتا اور کرم جیو کی بھول. گیان موکش انکور ہے اور کرم جگت کا مول. گیان چیتنا اور کرم چیتنا, میں کرم چیتنا اور کرم پھل چیتنا دونوں لے لینا. ان دو پارٹی کھڑی کی نا, ایک گیان چیتنا ایک کرم, تو کرم میں دونوں لے لینا. گیان چیتنا کے جگہ پرگٹے کیول رام. کیول رام مانے کیول گیان پرگٹ ہو جاتا ہے, اور کیول بھگوان آتما گیان کا گی بن جاتا ہے. کرم چیتنا میں بسے کرم بندھ پرنام. جب لگ گیان چیتنا نیاری تب تک جیو بکل سنساری. جب تک گیان چیتنا نہیں تیرے میں نہیں آئی تب تک یہ سنساری جیو بہت دکھی رہنے والا ہے. اور جب گھٹ گیان چیتنا جاگی تب سمکتی پر سہج بیراگی. تو سمیہ دشٹی ہو جائے گا اور سہج بیراگ کا دھیان کرنے والا ہو جائے گا, میں نے سارے کی لین پہ بھی چڑھ جائے گا. سدھ سمان روپ جب نج جانے پر سنیوگ بھاو پر مانے شدھاتم انوبھو ابھیاس اور ترویدھ کرم کی ممتا ناسے. یہ جو اس میں بیالیس پیج پہ نیچے نسکرش دیکھ لیتے ہیں کہ اکت سمپورن کتھن کا سار یہ ہے کہ گیان چیتنا موکش مارگ ہے اور کرم چیتنا اور کرم پھل چیتنا روپ اگیان چیتنا سنسار کا مارگ ہے. اس لیے ہمیں کرم چیتنا اور کرم پھل چیتنا روپ اگیان چیتنا سے مکت ہو کر گیان چیتنا کی ہی نرنتر پرورتنا چاہیے. اب یہ گاتھائیں پڑھو, یہ گاتھائیں پد مارنے کی.
वेदन्तो कम्म फलम् अपाडम् कोणदि जोदु कम्म फलम् सोतम् पुणो विबन्धति वियम् दुःखस्य अट्टविहम्. वेदन्तो कम्म फलम् मयि कदम् मुणदि जोदु कम्म फलम् सोतम् पुणो विबन्धति वियम् दुःखस्य अट्टविहम्. वेदन्ते कम्म फलम् सुहृदो दुहिदो यहावदि ज्योतिदा सोतम पुणो विवंदति वियम दुःखस्य अठव्यम् जो कर्म फल को वेदते निज रूप माने कर्म फल है बांधते वे जीव दुख के बीज वसु विद कर्म को जो कर्म फल को वेदते माने कर्म फल में किया है बांधते वे जीव दुख के बीज वसु विद कर्म को जो कर्म फल को देते हो सुखी अथवा दुखी हो हैं बांधते वे जीव दुख के बीज वसु विद कर्म को।
इन तीनों गाथाओं की दूसरी पंक्ति बिल्कुल एक सी ही है और जिसका अर्थ है कि वे बांधते हैं जीव दुख के बीज वसुविध कर्म को। वे जीव आठ प्रकार के कर्म जो दुख के बीज हैं उन कर्मों को बंधक बांधते हैं। तो एक तो ये नीचे की लाइन बिल्कुल एक सी है और ऊपर की लाइन में शुरू की आधी पंक्ति बिल्कुल एक सी है। जब वेदंतो कम्म फलम फिर दूसरी गाथा में भी वेदंतो कम्म फलम फिर तीसरी गाथा में भी वेदंतो कम्म फलम है ना और नीचे सोतम पुणोदि बंदर बीयम दुख से अष्टभ्यम सोतम पुणोदि बंदर बीयम दुख से अष्टभ्यम है ना। और ऐसे ही अपन ने पद्यानुवाद में भी किया है। देखो जो कर्म फल को वेदते फिर दूसरी गाथा में जो कर्म फल को वेदते तीसरी में भी जो कर्म फल को वेदते हैं बांधते वे जीव दुख के बीज बसविधि कर्म को बिल्कुल डेढ़ डेढ़ लाइन बिल्कुल एक सी है। अब अंतर क्या है तो पहली गाथा में कहते हैं निज रूप माने कर्म फल ये अंतर जो वेदते हैं और उस कर्म के फल को ये मानते हैं कि ये मैं हूं ये मेरे हैं। अब मैं के साथ में मेरे भी लगा लेना क्योंकि एकत्व ममत्व की दो ही चीजें हैं ना यहां पर। और दूसरी में क्या है कि मां ने कर्म फल मैं किया देखो या ऊपर तो मां ने कर्म फल मेरे हैं और नीचे के मैंने कर्म फल को किया और तीसरे में कि हो सुखी और एवं दुखी हो और कर्म फल को देखते हुए सुखी या दुखी होते हैं ये भोगने की बात आ गई। ये आदि आदि जो पंक्ति है तो उसने पहली बात तो एकत्व ममत्व के लिए ली दूसरी बात कर्तृत्व के लिए ली और तीसरी बात तो पहली बात को अपन ज्ञान चेतना समझ लो और दूसरी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ऐसी तीन से संबंधित तीन गाथाएं हैं एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व। ये जीव जो ये करते हैं वो पहली का एक सामान्य अज्ञान चेतना नाम दिया उनने और दूसरे के फिर दो भेद कर दिए अज्ञान चेतना के कर्म चेतना हो कर्म फल चेतना। तो इन तीन गाथाओं में ये बताया कि ये अज्ञान चेतना जिसके दो भेद हैं कर्म चेतना हो कर्म फल चेतना उसमें जो चेतते हैं वे अनंत काल तक संसार में भ्रमते हैं और अनंत दुख पाते हैं। ये तो गाथाओं का अर्थ हो गया। और संस्कृत टीका में आत्मख्याति में उन्होंने इनको उस वाक्यों में बांट दिया। देखो ये बात इसमें भी लिख दी है कि तीनों गाथाएं लगभग समान सी ही हैं शेष बातें समान होने पर भी अंतर मात्र इतना ही है कि पहली गाथा में वेदन में आते हुए कर्म फल में एकत्वत्व की बात है दूसरी गाथा में कर्तृत्व की बात है और तीसरी गाथा में भोक्तृत्व की बात है। एक लड़का मेरे से पूछता था कि जब एक अक्षर कम हो जाता है तो उनको एक पुत्र के बराबर सुख होता है तो ये क्यों तीन तीन लाइनें लिख दी एक ही लाइन लिखते क्यों और जो अंतर डाले वो तीनों को कह देते अर्थ करने में कर ही दिया ना। लेकिन आचार्य कहते हैं हमें तो भावना नचाना है यहां ऐसी कंजूसी करके हम क्या करें हमें तो और जो सामान्य विषय है उसमें हमको वो एक करना है, वो कंजूसी अपने उपयोग को वो खराब नहीं करना है। देखो आचार्यों क्या है, जो मुनिराज है ना जंगल में रहते हैं तो उनकी बहुत मर्यादा है, इधर पीसी का मंडल तो चाहिए लेने रखने साथ में, अब एक कोई शास्त्र रखते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सी किताबें छपी हैं जो संग्रह संग्रह द्रव्य संग्रह पंचास्तिकाय संग्रह अथवा जिनवाणी संग्रह, अपन ने बाद में ऐसी किताबें छपी ना संग्रह के नाम से, इसका अर्थ समझते हैं आप क्या है कि वो गाथाएं उन आचार्य ने खुद नहीं बनाई हैं, उनने यहां वहां से जो प्रसिद्ध गाथाएं थी उनका संग्रह किया है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि वो ये गाथा रसमरू मगंधम है कुंद कुंद के पांचों ग्रंथों में मिलती है, और आचार्य दूसरे ग्रंथों में भी मिलती है। तो इसलिए वो संग्रह करते थे, वो नहीं कहते थे मैं करता हूं इनका, वे गाथाएं तो पहले से ही प्रसिद्ध थी, लोगों को याद थी, लेकिन वो याद गाथाओं में से भी व्यवस्थित बना करके उनने जैसे कुंद कुंद के पांचों ग्रंथों में से महत्वपूर्ण गाथाएं निकालकर 101 अपन ने और उसका कुंद कुंद शतक बनाया। तो अपन ने गाथा तो एक भी नहीं बनाई ना उसमें, लेकिन उनको निकाल के वो एक अलग क्रम बनाया, वो समय साल में जिस क्रम से थी उस क्रम को नहीं रखा, तो पहले आत्मा संबंधी गाथाएं दी, फिर सम्मा दर्शन संबंधी दी, फिर सम्यक ज्ञान संबंधी दी, फिर सम्यक चाहत संबंधी दी, एक एक उसमें आप गहराई से देखेंगे तो एक व्यवस्थित क्रम भी है, उस क्रम को जमाने में भी उतनी ही मेहनत हुई है जितनी उनको छांटने में। तो इस तरह से संग्रह ग्रंथ बनते थे। अब वो संग्रह ग्रंथ इतने अधिक बनते थे कि हर मुनि एक संग्रह बना लेता था, क्यों कि उसे पाठ करना है रोजीना, और ज्यादा तो रख नहीं सकता है, वो पुराने ताड़ पत्र होते थे क्योंकि वो न गर्मियों में धूप से जले, न बरसात के पानी से गले, न उनके अक्षर खराब हों, छेद कर करके बनाते थे ना, तो वो बहुत लिमिटेड रख सकते थे। तो जो चीजें उनकी रोजाना की आवश्यक थी उनके लिए, तो उनको वे उसमें संग्रह कर देते थे। अभी भी आप देखो ना पूजन की पूजन संग्रह क्यों, कि यहां की सब पूज रहे, एक दानत राजी के राजी की एक बलजी की फलाने की इकट्ठी कर करा करके और उन्होंने इकट्ठी कर ली, और हमको ये धर्म की दक्षिण पूजन चाहिए और पंचमेरू चाहिए और फलानी चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, हमारे मंदिर श्री मंदिर विराजमान थे श्री मंदिर की चाहिए, इकट्ठी कर ली उनके हिसाब से। तो हर एक आदमी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से इकट्ठी कर लेता है, तो वो हर साधु अपनी उस चीजों को इकट्ठी कर लेता था। और वो किताब किनकी है, जैसे अपन अपन नाम लिखते हैं ना कि रमेश की है फिर सुरेश की, तो वो मुनि महाराज लिख देते अपने नाम ऊपर कि ये जो संग्रह की पुस्तिका है वो मेरी है, पहचान के लिए रखना पड़ता है ना, तो वो उनका नाम हो जाता है द्रव्य संग्रह नेमिजन सिद्धांत चक्रवर्ती। नेमिजन की एक बनाई एक गाथा नहीं है, नेमिजन ने तो संग्रह की, समझे ना, और वो गाथाएं उन्होंने द्रव्य संबंधी गाथाएं रख ली, उसने पांच छह द्रव्यों वाली भी रख ली, रत्नत्र वाली भी रख ली और सात तत्वों वाली भी रख ली, लेकिन तीनों जरूरी थी, एक अध्यात्म की दृष्टि से, एक उसकी दृष्टि से सिद्धांत की दृष्टि से, एक द्रव्य व्यवस्था की दृष्टि से, और द्रव्य संग्रह उसका नाम रह दिया, एक बार लघु द्रव्य संग्रह होगी 26 गाथा की, फिर 52 गाथा की कितनी होगी, बृहद द्रव्य संग्रह होगी 60 की, फिर और बृहद द्रव्य संग्रह बन गई दूसरी। तो इस तरह वो संग्रह करते थे काल में ना। तो अब वो ऐसे ग्रंथ ऐसे कई तैयार हो गए, समझिए ना, तो वो उन ग्रंथों के आधार पर उसमें संग्रह के लिए दो तरह का क्राइटेरिया होता था, एक तो वो जो रोजाना उन्हें जिसका पाठ करना है, और एक वो कि जिसका उन्हें स्वाध्याय करना है, बस एक दफे पढ़ लेंगे वो छोड़ देंगे। तो फिर रोजाना के पाठ वाली चीजें वो अपने संग्रह में साथ में रखते थे, और फिर दूसरी और जो चीजें होती थी उनको फिर जितना पढ़ लिया तो कहीं किसी मंदिर में छोड़ दी और अपन दूसरी चीज संग्रह करेंगे। तो इस तरह से आदान प्रदान आपस में होता रहता था और वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनकी वो चलती थी। तो ये जो समय सार जैसे है तो कहीं तो इतनी कंजूसी करेंगे जैसे तो बताया ना ये एक अक्षर कम हो जाए और कहीं कहते बोलते हमें तो अभिनवों का मंत्र 108 दफे बोलना है। अब कहते मैंने अभिनवों का मंत्र क्यों 108 दफे बोलना, एक ही दफे बोलना रखो ना तो और नई चीज बोलो। तो इसको तो 108 दफे बोले और हम इतनी कंजूसी करें, है ना। तो इस तरह जो पाठ की चीजें होती थी उसको वे रिपीटिशन में नहीं घबराते थे। वो 108 प्रकार के कर्मों का करना है तो उनका निषेध के लिए 108 दफे बोलेंगे। यदि उनको मनवचन का कृतकायत अनुमोदना का करना है तो 108 भंग बना करके आपको बोलेंगे कि मैं मन से ये नहीं करता हूँ, मैं वचन से ये नहीं करता हूँ, मैं काया से ये नहीं करता हूँ, मैं मन से करता नहीं हूँ, मैं वचन से कराता नहीं हूँ, मैं अनुमोदना नहीं करता हूँ, ऐसे बना बना करके वो भंग बनाएंगे। वो अभी आगे आने वाले हैं सब। तो अभी आप कहेंगे कि एकदम इतना रिपीटिशन कैसे, इतना रिपीटिशन आएगा कि हम और तुम भी घबरा जाएंगे, कह देंगे बाकी तुम पढ़ लेना हमने बता दी स्टाइल और आचार्यों ने नहीं किया, उनने तो पूरे लिखे। जबकि ताल पत्र पर लिखना कितना कठिन था, उसको साथ में ढोना कितना कठिन था, और हमारे लिए क्या है, सब तैयार ही है। तो हम लिखने में भी कंजूसी करते हैं, वहां भी बार बार आता कि अपन ऐसा लिख दो, बाकी के ऐसे ही लगा लेना, भंग बना लेना। ऐसा प्रयोग कुंद ने भी किया, उनने कह दी कि ये गाथाएं तुम ऐसी बना लेना, कितनी 16 गाथा बना लेना, 21 गाथाएं बना लेना, एक एक इंद्री की लगा करके, कर्म की लगा करके बनाए ऐसे। तो वो भी प्रयोग किया कि तुम बना लेना, और कहीं पर वो नहीं किया कि 32 कितने कलश, 20 कलश बना, वहां ऐसी कंजूसी नहीं करी। एक ऐसे बद्धो न तथा परस है, द्वावती पक्ष पाता तत्वेदी चित पक्ष पाता हम, है ना। तो ये उस को 20 पंक्ति को लिख दिया है ना। तो वो अपेक्षा समझेंगे तो हमको एक प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि कहां। इसका मतलब ये है कि आचार्य उसका कितना महत्व समझ रहे हैं और इसलिए उन्होंने उस पर इतना वजन दिया है, ऐसी कोई गलती वलती नहीं की है। देखो कहां पढ़ रहे थे अपन, आत्मख्याति पढ़ रहे थे ना, गाथाओं का अर्थ तो कर लिया है। ज्ञान स्वभावी पेज नंबर 44 पे, ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा से भिन्न भावों में इस प्रकार चेतना, चेतना माने सोचना जानना मानना, इस सब का नाम चेतना है, है? कि ये मैं हूं यह अज्ञान चेतना है, और यह अज्ञान चेतना दो प्रकार की होती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो एक इतना अर्थ जो अज्ञान चेतना है पहली गाथा का हुआ, फिर एक दो प्रकार की है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, फिर दूसरा अर्थ जो लिखा दूसरी पंक्ति में वो कर्म चेतना का, और तीसरी पंक्ति में कर्म फल चेतना का। इसमें ज्ञान से अन्य भावों में ऐसा जानना मानना कि मैं इनका करता हूं कर्म चेतना है, ज्ञान से अन्य भावों में पर पदार्थ में हो गए ना, और ऐसा मानना कि मैं इनका भोगता हूं कर्म फल चेतना है। माने इसको उन्होंने व्यवस्थित करके सामने रख दिया कि इन तीन गाथाओं में हमने क्या बात कही। पहली गाथा कॉमन है और इसलिए उसका नाम रखा ज्ञान चेतना वाली, और फिर दो गाथाएं अलग अलग हैं कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की। यह समस्त अज्ञान चेतना संसार संसार की बीज है, क्योंकि संसार के बीज रूप जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म हैं, यह अज्ञान चेतना उनका बीज है। यानी आठ कर्मों को ये बांधती है और वे कर्म संसार के बीज हैं, और ये उनका बीज है, इसलिए बीजों का बीज है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, प्रलय के लिए नहीं, नाश करने के लिए, प्रलय नाश में तो समझते, नाश में तो कुछ बता रहे, वो तो प्रलय हो जाए, सब साफ हो जाए के लिए, जड़ मूड से उखाड़ फेंकने के लिए, संपूर्ण कर्मों से संन्यास की भावना को और संपूर्ण कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाकर, बारंबार भाकर स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को सदा ही नचाना चाहिए, भाना चाहिए। ये असली मुद्दे की बात यहां शुरू हुई है। मैं ये चलेगी अभी बहुत लंबी। यहां से मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, ये है हमारा असली काम, असली मोक्ष मार्ग के लिए करना है, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए, कि कर्मों के नाश के लिए नहीं कहते, इसके नाश के लिए कर्मों से संन्यास की भावना, कर्म और कर्म फल इन दोनों से संन्यास की भावना को नचाओ और ज्ञान चेतना की भावना को जगाओ। क्या कह रहे हैं भाई, इतने ये संसार का रास्ता है, ये मोक्ष का रास्ता है, करने का काम क्या है? अभी बहुत क्रियाकांड है, पूजा पाठ, यात्रा, तीर्थ, व्रत, उपवास, तपश्चर्याएं, जो भी बहुत बहुत, उनको किसी को यहां पर जगह ने दूर से भी झांकने नहीं दिया। भाई इतना कह दिया कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की भावना को हटाओ और ज्ञान चेतना की भावना को जगाओ। इन गाथाओं ये स्वामी जी का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा है। ज्ञान से अन्य ऐसा जो कहा, वह उस ज्ञान का अर्थ आत्मा है, ज्ञान गुण नहीं, माने आत्मा अपने आत्मा से भिन्न। भाई शुभ और अशुभ भाव सभी आत्मा से अन्य हैं, जुदे हैं, उनमें अपनेपन का अनुभव करना अज्ञान चेतना है। यह अज्ञान चेतना दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। भगवान आत्मा के सिवाय अन्य पुण्य पाप के विकारी भाव को मैं करता हूं ऐसा अनुभवना मानना कर्म चेतना है। और यहां कर्म शब्द का जड़ कर्म की बात नहीं लेना, सुभाषु भाव रूप भाव कर्म की बात लेना। तथा विकार में हर्ष शोक का वेदन करना एक कर्म फल चेतना है। क्या विकार में माने क्या? देखो भोगने का भाव हुआ तो उसमें हर्ष का भाव भी होता है और दुख का भाव भी होता है। हर्ष का भाव कैसे होता है? कि भूख लगना ये विकार है क्या? अविकार। तो भूख नहीं लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं ना, तो खाने का मजा नहीं है। तो भूख लगने के लिए दवा खाते ना, पर उसी में हम दुख मना रहे और वो लगे, और फिर कभी ज्यादा लगे तो उसको बुरा भी मानने लगते हैं, है ना। देखो समस्त सुभाषुभ भावों को करने रूप और भोगने रूप परिणाम संसार के बीज हैं, 84 लाख योनियों में भटकने के बीज हैं, क्योंकि आठों ही कर्म अज्ञान चेतना के बीज हैं। राग से भिन्न करके भेद ज्ञान के अभ्यास द्वारा मैं तो शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वरूप प्रभु हूं, अंतर में ऐसी प्रतीति व अनुभव करने का नाम ज्ञान चेतना है और वह धर्म है। आत्मा शुद्ध एक चैतन्य सत्ता पने अंदर में विराजमान है, उसमें स्वसन्मुखता करके उसी का अनुभव करना भगवती ज्ञान चेतना है और वही भवच्छेद का उपाय है। ये स्पष्ट कह दिया कि ये मोक्ष का मार्ग है, ये संसार का मार्ग है। इस सर्व ये तीन चेतनाओं के अंतर्गत उन्होंने समाहित करके बात बताई। जरा और कठिन बात कर, कठोर बात, कठिन नहीं कठोर, कि सुभाषुभ भाव यदि करने लायक नहीं है तो छोड़ने लायक भी तो नहीं है, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि के भी तो होते हैं। सुभाषुभ भाव दोनों ही क्यों, शुभ भाव को तो सारा जगत कहता ही है, ये तो सुभाषुभ भाव कैसा वो दृष्ट की भूमिका में तो होनी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि भूख नहीं लगे तो उसका इलाज कराते हैं। ऐसी पांच इंद्रियों के विषय के भोगने की क्षमता कम हो, वो भोगने का भाव कम लगे तो सबका इलाज कराते हैं। उस सबको हम बीमारी समझते हैं, है ना, उसको हम अपना स्वास्थ्य नहीं समझते हैं। पांच इंद्रियों के खूब अच्छी तरह भोगने का भाव हो गए और खूब जम के भोगे तो उसको हम ठीक समझते हैं। तो इस तरह शुभ और अशुभ दोनों ही भाव हो गए ना, कहते इन दोनों भावों को बिल्कुल छोड़ने लायक तो नहीं है। तो अगर अरे भाई सर्व शुभाशुभ भाव छोड़ने लायक ही है। 108 में कलश की टीका में पांडे राजमल जी ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। देखो क्या किया कि यहां कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप या आचरण रूप जो चारित्र है, जिसे व्यवहार चारित्र कहते हैं, यदि वह करने योग्य नहीं है तो छोड़ने योग्य भी तो नहीं है। उत्तर इस प्रकार है कि वर्जन योग्य है, छोड़ने योग्य है, कारण कि व्यवहार चारित्र, तो यद्यपि वो व्यवहार चारित्र नाम है उसका, यद्यपि व्यवहार चारित्र होते हुए भी सुनो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। इतनी मतलब लिखा कर लिखा कौन किसके बारे में कह रहे जी, अनुवृत महाव्रत के बारे में। जो भी व्यवहार चारित्र है, जो भी स्वभाव रूप है, विशुद्ध परिणाम रूप है, हैं? जो भी अच्छे से अच्छे कर्मबंध का कारण है, हैं? जिसके कर्मबंध की बात सुनकर के मुंह में पानी ललचा जाए तो वो कहते कि नहीं नहीं तो नहीं है, कहते नहीं, तीन छोड़ने लायक है, वर्जन करने योग्य है, माने छोड़ो ऐसा कहने लायक है, और क्योंकि वो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है, आत्मा का घातक है। अब बोलिए ये बात कोई किसी स्वामी जी की है? ये 400 वर्ष पहले इसी जयपुर के पास में बैराट में लिखी गई बात है। बैराट नगर ये अलवर के रास्ते में है, यहां से दिल्ली के रोड पे जाओ ना, शहपुरा से फिर मुड़ जाते हैं तो वहां बैराट नगर आता है। वहां 400 वर्ष पहले बनारसी दास के भी पहले ये बात लिखी गई। इसलिए कह रहा हूं कि स्वामी जी पे किसी जो विद्वान कहता है हम उनके नाम में मर देते हैं और सब एक मत विरुद्ध होकर के इनने अपना मत चलाया है, अपना मत चलाया, क्योंकि यदि पुरानी मान लें तो फिर ये जनता नहीं मानेगी हम इसकी, और किसी एक नए आदमी के नाम पे कहें कि ये कहता है और गलत है तो चल जाती है। इसलिए इसमें क्लियर लिखा है। और ये देखो एक कांजी स्वामी का पेज एक नंबर डाला, प्रयोजन रत्नाकर भाग 10वें भाग पर प्रश्न नंबर 50 और 51 पर लिखी है। तो उन्होंने तो राजमल जी के नाम से लिखी है, उन्होंने तो बोली है जो राजमल जी के नाम से बोली ना, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जिसे आप स्वभाव कहते हैं, विशुद्ध कहते हैं, व्यवहार चारित्र नाम शास्त्र में लिखा है। अभी वो अनुवृत्त महाविद जिसमें है उसको दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। अब देखिए, अब हमें इनसे छूटना है तो इनके छूटने के लिए हम क्या करें फिर? तो कहते हैं भाई वो ज्ञान चेतना की भावना नचाओ। अभी जितने जितना अंदर में अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं ऐसा जितना घुमाया, अब उतने जितने जब तुमने ये रटा है उतना ये रटना पड़ेगा कि अच्छे नहीं है अच्छे नहीं है अच्छे नहीं, ऐसा कहो कहने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब जिन लोगों ने उसे अच्छे कहा, देखो सुनो रमेश वे अच्छे थे नहीं ना, पक्की है, फिर अच्छे कहा, उनको कोई नहीं कहता है कि तुम मैं अच्छे मत कहो, और वे अच्छे नहीं है और हमने वो अच्छे नहीं है कहा और आगम का प्रमाण लिखा करके, तो भी हमारा गलत शरीफ है। इसलिए कहता हूं तुम लोगों को कि तुमने कैसा काम चुना है, समझ लो खतरनाक। मैं ये कहता हूं कि जो काम समझाने का हमें मिला है इससे उल्टा समझाना होता تو ہم اس سے دس گنی کم محنت میں دس گنے زیادہ لوگوں کو سمجھا دیتے اور ان کے گلے اتار دیتے. کیا گنگا جی کا پانی گنگوتری سے لے کر اور بنگال کی کھاڑی تک جانے میں کچھ نہیں ہے. وہ تو وہاں سے نکلا تو اپنے آپ ہی پہنچ جانے والا ہے, وہ جتنا سمے لگے گا وہ لگے گا بس ختم, ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اور وہی گنگا کا پانی بنگال کی کھاڑی میں سے لو اور گنگوتری میں جا کر کے ڈالو, ہے نا, تو ایک گھڑا پانی لے جائے کوئی آدمی تو کتنا خرچہ آئے گا, کتنے دن لگیں گے بتاؤ. یہ اپنا کام ایسا ہے کہ اپن کو وہاں سے وہاں لے جانا ہے وہ پانی, تو نہیں کرنا ہم کو کام, ہم تو وہی کریں نا, وہاں سے لے جانے کا آرام سے جائے گا پانی, ہمارا نام آ جائے گا کہ ہم لے گئے, ہم دھرموپدیشک ہو جائیں گے, پانچ پانچ ہزار آدمی آئیں گے سننے کے لیے, وہ جے جے نعرے بولیں گے اور کمل بن جائے گا, کمل پہ آگے جائیں گے پیچھے جائیں گے, سب سب دوڑیں گے کیا ہے, اور یہ کام والے کون کون سب بھی اڑیں گے, کوئی دیکھنے دور سننے والا نہیں ملے گا. ہمیں تو تم مل رہے سننے والے, تمہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے یہ سوچو, لیکن یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا, نہیں تو دھرم ہی ختم ہو جائے گا, یہ غائب ہو گیا تو جین دھرم ختم. تو یہ کام اس کام کے بنا کام نہیں چلے گا رمیش, یہ برسات کیسے ہوگی, یہ ہمالے میں پانی آئے گا کہاں سے, پانی کا تو جیسے فبارے میں ایسا گھومتا ہے نا, نیچے جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے, ایسا گھومتا ہے نا وہی پانی, یہ سمندر میں سے یہ پانی اٹھتا ہے وہ دھوپ سے, گرم دھوپ سے اٹھ کر کے بادل بن کے آکاش میں جاتا ہے, سمجھے نا, اور وہاں سے جا کر کے بنگال کی کھاڑی سے وہاں سے لے کر کے اس اونچائی کی طرف ہمالیہ کی طرف اتنے اوپر سے ادھر سے ادھر کو آتا ہے, اور آ کر کے ہمالیہ کے اوپر جا کے ٹھنڈے جا کے برف کے روپ میں جم جاتا ہے اور بالکل ڈسٹرکٹ واٹر بن کے وہاں سے سمجھتے گا, وہ کھارا گندا پانی, کتنی گندگی سارے دیش کی گندگی گئی تھی نا, اور سمندر میں سب اکٹھی ہو گئی تھی, اور اسی سمندر میں سے اس پانی کو اٹھا کر اور اس کو ڈسٹرکٹ واٹر بنا کر اور ہمالیہ کی چوٹی تک پہنچتا ہے, کتنا پہنچتا ہے, ایک آدھ گھڑا. اس ندیوں میں جتنی یہ باڑھ آتی ہے نا, سب وہ پانی سمندر سے ہی اٹھ کے وہاں گیا ہے, اور ایک ایسا چکر چلتا ہے اور زیادہ دن نہیں لگتے, ایک سال میں گھوم جاتا ہے. ابھی گرمی آئے گی تو اٹھے گا, گرمی سے تپ تپ کے اٹھ کے اٹھ کے ادھر آئے گا, اور جب ادھر پہنچ جائے گا اور ٹھنڈک ہوگی پھر برف وہ جم جائے گا, پھر آئے گا پھر پل گئے گا تو پھر وہ برسے گا, بیچ بیچ میں برستا جائے گا, سارے کھیت کو سینچے گا, آپ کے کنویں میں پانی لائے گا, تالاب بھر دے گا, کیوں کھیتوں برکش جنگل کے انہیں پالتا پوچھتا ہوگا, اور پھر بچے گا تو وہاں پہنچ جائے گا, اور پھر لوٹ کے وہاں سے جا کے بچے گا تو نیچے جائے گا, ایسا چکر چلتا ہے, کوئی چلاتا ہے نا, ایسا ہم کو چلانا پڑے گا. بنگال کی کھاڑی میں سے گنگوتری میں پہنچانے کا کام, یہ سمجھانا کتنا ہے کہ دشٹ ہے, انشٹ ہے اور گھاتک ہے کون, اسے ویوہار چارتر کہتے ہیں. نشچے تحت کی تو خبر ہی نہیں ہے, نشچے تحت کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے. جانی کو بھی راگ کا وکلپ آتا ہے, اس ٹائم ہو گیا, جانی کو بھی راگ کا وکلپ آتا ہے پرنتو اسے نرنتر ایسا بھید گیان برستا ہے. دیکھو وکلپ آتا ہے اس کا راگ کا, راگ بھی آتا ہے لیکن اندر میں کہ یہ میں نہیں ہوں, اس کا کرتا ہوتا میں نہیں ہوں, ہے نا, میں اس سے بھن ہوں, بھید گیان کے ایسے اگر ابھیاس سے سسنمکتا سروپ سسنمکتا ہوتی ہے, اس لیے ہے بھبے سکل کرم کی اور سکرم فل سکل کرم پھل کی بھاونا کا تیاگ کر سوبھاؤ بھوت بھگوتی گیان چیتنا کو سدا بھاو, तो ये धर्म है। अब एक दृष्टि से बहुत कठिन लगता है और एक दृष्टि से कितना सरल है, ना इसमें भूखे रखने का काम है ना इसका काम है, अब शांति से बैठ करके इस भावना को नचाना है, चाहे बीमार हो चाहे अच्छे हो चाहे अंधे हो चाहे काने हो चाहे कम सुनाई देता हो, क्या फर्क पड़ना है। यदि आपके ख्याल में ये बात आ गई तो ये मैं नहीं हूं ये मैं हूं, बस ये भावना नचाना तो क्या करना, समाय करना के नमो का मंत्र का पाठ करना कि भक्तम्बा जी का पाठ करना और भक्तम्बा जी 148 छंद याद करना पड़ेंगे ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नो बोझा बोझा माते पर बस। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं और मैं न परका करता धरता नहीं हूं। अभी मैं ये कहूंगा भाई ये गीत पढ़ लो तो कहोगे अच्छा सब छोड़ करके नमो कारण छोड़ करके तुम्हारा गीत पढ़ लो क्यों और वो धर्म हो जाएगा। अरे तो गीत नहीं है, हमने जिस बात को समझा है कि ऐसी भावना को नचाना वो हमने लिख दी है, उसमें हमारे बाप की थोड़ी है। क्यों एकत्व मत फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व और वही तो छोड़ा है उसने, पढ़ो पूरा ज्ञानानंद स्वभावी। क्या वो ज्ञानानंद स्वभावी पर भी ये पूरी किताब लिखी जा सकती कम से कम 200 पेज की, तो प्रचन भी किए जा सकते हैं एक महीने तक लगातार। क्या इतना विषय मेरे दिमाग में भरा है वो समय सारा आ गया उसमें है? देखो जिनको अंतरंग में सिद्ध पद को प्राप्त करने की भावना हुई ये सुनो, उनको आचार्य फरमाते हैं कि हे मोक्षार्थी तुम सकल कर्म फल के सन्यास की भावना को नचाकर, समस्त कर्म के फल के सन्यास की भावना, क्या मतलब 148 प्रकार का जो कर्म है जिसमें तीर्थंकर प्रकृति भी है उससे सन्यास की भावना को जगाओ, यानी वो हमें छोड़ना है, अब हमें तो बांधना है। उच्च गोत्र का क्या है, निच गोत्र का क्या है, मुझ गोत्र का क्या है, उच्च गोत्र निच गोत्र का शुभ नाम का क्या है, फला साता वेदनी का क्या, 24 घंटे साता वेदनी बने असाता वेदनी इसमें ही मर रहे हम, ना मिथ्यात्व की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बस हमको थोड़ी अनुकूलता मिल जाए। क्यों अभी ये गर्मी के दिन हो ये पंखा चल रहा है, अभी लड़का इसके अनुसार इस पंखे के बीच में बैठेगा उसे हवा नहीं कम आएगी, इधर बैठेगा उसे अच्छी आएगी, इधर आएगा मजा आएगा, ये पंखा की हवा में कि हमारे प्रोजन में मेरा साता वेदनी का हो जाएगा, मतलब जरा सी साता जो शास्त्र ने देखा ना कि धूप में बैठ के ध्यान करते थे, मतलब उन्होंने इस साता असाता की परवाह नहीं की, उसका नाम काय क्लेश नाम का तप है, काय क्लेश जबरदस्ती भोगा उसका नाम नहीं है। लिखा ना कहा गया है जिनको दे मोक्षार्थी जीव सकल कर्म फल के सन्यास की भावना को नचाकर अपनी स्वभावभूत भगवती ज्ञान चेतना को ही सदा नचाओ, ज्ञान चेतना रूप होकर सतत प्रणमन करो, भगवान आत्मा का सुसंवेदन करके ज्ञान व आनंद के वेदन में ठहरो, इस भगवती ज्ञान चेतना को ही सदैव नचाओ क्योंकि यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। भगवती ज्ञान चेतना कहो या भगवती प्रज्ञा कहो दोनों एक ही बात है, ये है मोक्ष मार्ग पर खत्म, ये करने योग्य कार्य है। अब ये हमको दिखता ही नहीं है, किसी की समझ में ही नहीं आता है, तुम पूरा हिमालय से और कन्याकुमारी तक जाओ कोई बात ही नहीं है, कहीं चलते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि ये धर्म है, क्योंकि उनके पास तो बहुत धर्म है, उनको खुद ही नहीं करनी है, उनमें ये देखेगा इसमें धर्म नहीं है तो जितनी भी आलोचना आचार्यों को करनी पड़ती है ना शांति जी, वो तो इसलिए करनी पड़ती है कि उस वहां से हटता नहीं उपयोग तो इसकी खोज नहीं होती है, तो तुम उस ये धर्म नहीं है ऐसा मानो तो इसकी खोज करो। देखो अब ये जो भावना को नचाओ का आदेश दे रहे ना, अब वो नचाने की बात चलेगी पूरी, ये समझो परम समाधि मरण की बात है, समय की बात है, असली धर्म की बात है जितने दिन चलेंगे। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ये दोनों अज्ञान चेतना रूप होने से हे हैं और ज्ञान चेतना परम उपादेय है। विगत गाथाओं में और उनकी आत्मसाती टीका में भगवती ज्ञान चेतना को नित्य नचाने की प्रेरणा दी गई है। उक्त प्रेरणा को स्वयं ही अपना कर यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव पद्य और गद्य के माध्यम से ज्ञान चेतना का नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भूत भविष्यत वर्तमान कालीन कर्म चेतना संबंधी भूगलों को प्रतिक्रमण कल्प आलोचना कल्प और प्रत्याख्यान कल्प के माध्यम से मन वचन काय कृतकार अनुमोदना को से त्याग करने की बारंबार भावना भाते हैं और 148 कर्म प्रकृतियों के फल के त्याग रूप कर्म फल चेतना संबंधी भूलों के त्याग की भावना भाते हैं। ये चलेगा प्रकरण, ये जो है ना अब निष्कर्म भाव का कई पंक्तियों में आता है ना, मैं तो निष्कर्म भाव में हूँ, ये तीन चार छंद है मिल गया, अभी प्रचन तो पूरा हो गया, ये तीन चार छंद का पाठ करो मजा आएगा। कौन समझ गए तुम, मैं तो अभी निष्कर्म भाव में रत हूँ। इसमें देखो है अभी मैंने सुन रहा था तुम लोगों से, हाँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य भाव में है ना, गाथाओं का ही पास
भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्मगत कार्य अर्व अनुमोदनादि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से वचन काय से अवलंबन लेता हूँ परम निष्कर्म भाव का मोह भाव से भूतकाल में कर्म किए जो उन सब का ही प्रतिक्रमण करके अब मैं तो पढ़ते रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में मोह भाव से वर्तमान में कर्म किए जो उन सब का आलोचन करके ही अब मैं तो बढ़ते रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा मैं करके प्रत्याख्यान भाव कर्मों का अब तो बढ़ते रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में तीन काल के सब कर्मों को छोड़ इस तरह परम शुद्ध निश्चय नव का अवलंबन लेकर निर्मोही हो बढ़ते रहा हूँ स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में कर्म वृक्ष के विष पल मेरे बिन भोगे ही फिर जाए बस यही भावना भाता हूँ मैं क्योंकि मैं तो बढ़ते रहा हूँ स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में सब कर्मों के फल से सन्यासी होने से आत्म से अतिरिक्त प्रवृत्ति से निर्वृत्त हो तिद लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूँ यह प्रवृत्ति ही बनी रहे बस अमित काल तक।
जो क्या लिखा है कर्म वृक्ष के हो गया प्रचंड घबराना नहीं सुनो शांति से कर्म वृक्ष के विस्फल मेरे बिन भोगे ही खिर जावे बस यही भावना भाता हूँ मैं। अब समझ गया ना माने तीर्थंकर प्रकृति जो मेरे को बनी है ये मुझे फल नहीं देवे और मैं तीर्थंकर नहीं बनू और ये खिर जाए मुफत नहीं और मैं चला जाऊं ये भावना भारे बोलो ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो ऐसी प्रकृति नहीं है कि वो संक्रमण हो जाएगा इसका उसमें उदय हो जाएगा ऐसा कट जाएगी और वो क्या क्या हो जाएगा उन्हीं नाम खिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं। और तीर्थंकर बन गए तो बनना ही पड़ेगा भोगना ही पड़ेगी समझ में आए ना आपके में। लेकिन तुम्हारी भावना क्या है सभी प्रकार के भावनाओं में कि ये कर्म मुझे बन गए हैं शुभ उत्कृष्ट कोटि के ये बिना फल दिए ही भू गई खिर जाए मैं तो ये चाहता मुझे नहीं चाहिए इनका फल ऐसी भावना कि सब ठीक है नहीं मिल गए तो भोग लेंगे कोई बात नहीं वैसे तो हमें कोई इच्छा नहीं थी क्यों वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी अब कोई बन जाएंगे तो कर लेंगे देख लेंगे ऐसा नहीं वो तो कहते हैं हमारा पुण्य वो प्रकृति पुण्य का उदय आवे और मैं बिना राजा बने ही वो सब खिर जाए परमाणु और मुझे नहीं भोगना पड़े राजा नहीं बनना पड़े समझ गए ना ये ऐसी भावना है इसका नाम है समझ लीजिए ना ज्ञान चेतना का नचाना। ये छंद में दो अंत की दो पंक्तियां बिल्कुल एक सी हैं बरत रहा हूं अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा ने ये अचरी जैसी आई है ये मूल कलशों में आई है ऐसा नहीं है कि मैंने यहां डाल दी है उन कलशों में आई हैं तो ये भावना नचाना है उस नचाने में हमारा मन तो नाचा है कम से कम और ये करने लिए कार है अब इसमें क्या दिक्कत है क्या तुम्हारे स्वास्थ्य क्या बुढ़ापा क्या जवानी क्या बचपन इसमें कहाँ किसकी कोई बाधा है कोई झंझट है कहाँ समाज का डर है कहाँ देश का डर है जमाने का कहाँ दिक्कत है कौन सी जमाने की परेशानी है इसमें कौन क्या तकलीफें होती हैं ये महंगाई बढ़ने से इसका क्या संबंध है? मेरे कहने का मतलब है कि जगत में जितनी प्रतिकूलताएं हम गिनाते हैं उन प्रतिकूलताओं से क्या लेना देना है ये धर्म करने में हम कितने स्वतंत्र हैं आसानी से कर सकते हैं और करना चाहिए पर करते नहीं।